योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है।
ओम शांति। आज हमारे बीच आदरणीय प्रोफेसर कोहली भाई जी पधारे हैं। हमारा और आपका बहुत ही सौभाग्य की बात है, आज भाई जी हमारे बीच है। इनका परिचय मैं क्या दूं, मैं अपने को बहुत ही छोटी समझती हूँ जो इनका परिचय करा सकूं। जैसे बाबा के लिए, दादियों के लिए हमारे पास शब्द कमी होते हैं ना परिचय देने के लिए, ऐसे उनमें से हैं भाई जी। वैसे भाई जी गुड़गांव को बिलोंग करते हैं और मोर देन 30 ईयर्स इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया है। बाबा के ज्ञान में भी 20 साल से ऊपर हो गया है। इंग्लिश में अनेक इन्होंने आर्टिकल्स भी लिखे हैं। जैसे बाबा कहते हैं घर घर को आश्रम बनाओ, घर घर में गीता पाठशाला होनी चाहिए, ऐसे भाई जी के घर पर ही बाबा का क्लासेस चलते हैं। ये इनके युगल और इनके तीनों ही कन्याएं बाबा के बने हैं। तो ऐसी एक महान विभूति आज हमारे बीच है। तो जैसे हम सोचते हैं ना, इस कलयुग में सच्चाई सफाई हॉनेस्टी से चलना मुश्किल है, लेकिन हॉनेस्टी का एक एग्जाम्पल है भाई जी। तो जैसे इनका एज तो बहुत ही ज्यादा है, फिर भी बहुत ही एक्टिव है। अगर कभी मैं इनके साथ चलूंगी ना, मुझे पूछेंगे आप इतना धीरे धीरे क्यों चल रही हो, मतलब इनका इतना फास्ट। चार लाइनें सुनाना चाहूंगी। आंखों में आपके आंसू कभी आए ना, होठों पे मुस्कान आपके कभी जाए ना, पूरा हो आपका हर ख्वाब, और जो ख्वाब पूरा ना हो वो ख्वाब कभी आए ना, वो ख्वाब कभी आए ना। करतल ध्वनि से हम भाई जी को वेलकम करेंगे। ज्यादा समय ना लेते हुए, मैं जनरल क्लास है वैसे, ये कोई टॉपिक्स को नहीं पढ़ाएंगे लेकिन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, मैं माइक को भाई जी को दे रही हूँ।
ये मेरे मित्र फुलियानी जी, सविता बहन और अन्य दैवी भाई बहनों, वास्तव में तो मैं यहाँ पर किसी और कार्य के लिए आया था। वो ये कार्य था, जैसा कि आप जानते हैं कि अपनी संस्था प्लैटिनम जुबली मना रही है, तो जब अप्रैल में एक एनुअल मीटिंग हुई थी, जनरल मीटिंग, तो ये एक प्रस्ताव रखा गया था कि एक सुविनेर तैयार किया जाए, बहुत सुंदर सा, खूबसूरत और बड़ा अच्छा बढ़िया सा सुविनेर तैयार किया जाए। तो ये प्रपोजल थी, तो उसको प्रैक्टिकल रूप देने के लिए मृत्युंजय भाई जी ने हमारे जो 19 विंग्स इनसे रिपोर्ट्स मांगी, 19 विंग्स की, क्योंकि पिछले 25 ईयर्स से ये विंग्स फंक्शन कर रहे हैं और बाबा ने भी इन विंग्स की बहुत तारीफ की है कि विंग्स द्वारा बड़ी सर्विस हो रही है। इन विंग्स में आपस में कंपटीशन नहीं है, आपस में कोऑपरेशन है, और अपने आप से ही एक्सेल करना यही लक्ष्य रहा है, और बाबा ने इन विंग्स की बहुत प्रेज की है। और विशेषकर पिछली जो मुरलियां चली हैं उसमें कहा है कि जो विंग्स के साथ हाई क्वालिटी वायरस क्वालिटी हैं, उनको गुलदस्ता पेश किया जाए बाबा को उनका, तो वो भी तैयारी हो रही है कि फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया जितनी अपनी संस्था में हैं, तो जिनसे संपर्क रहा है उनको आमंत्रित किया जाए, तो वो एक खूबसूरत सा एक सुविनेर निकाला जाए। तो गुलियानी जी तकरीबन 1.5 महीने से इस पे वर्क करते रहे हैं, 19 विंग्स की बहुत अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं, तो दैट इज द मेजर पार्ट ऑफ द सुविनेर। और मुझे भी 1 महीना पहले यहाँ मैं लगा कर दिया था, अब भी मैंने 4 तारीख को वापस जाना था, लेकिन वो कार्य जो है वो पूरा नहीं हुआ, वो इसलिए मैंने डेट एक्सटेंड करके 12th को अब जा रहा हूँ। तो इन्होंने कहा कि चलो यहाँ पर ही एक आप लोगों के साथ इंटरेक्ट किया जाए। वैसे हरिनगर से भी मुझे टेलीफोन आया था कि 11th से हम शुरू कर रहे हैं, आप 11th को यहाँ पर इनॉग्रेशन पे आए। तो मैंने कहा मैं तो मधुबन में बैठा हूँ, तो इसलिए वहाँ तो जाना संभव नहीं हो सकेगा। तो विशेषकर मैं और गुलियानी जी ये सुविनियर पे सारी अपनी अटेंशन कंसेंट्रेट कर रहे हैं। हम दोनों का सब्जेक्ट इंग्लिश ही रहा है कॉलेज में, और गुलियानी जी का भी और मेरा भी लौकिक में लिखने का मेन हमें शौक है, लिखने का न्यूज़पेपर्स के लिए भी और वर्ल्ड रिन्यूअल के लिए, तो ये एडिट करते हैं। और प्योरिटी में भी मैं पहले आर्टिकल्स देता रहा हूँ। तो हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि हमें इस कार्य के लिए निमित्त बाबा ने बनाया है, और हमारी कोशिश होगी कि जो सुविनियर बने वो लिटरेरी हो, बिकॉज सुविनियर इज नॉट सपोज टू बी डल लाइक द रेलवे टाइम टेबल। रेलवे टाइम टेबल नहीं है डल, अनइंटरेस्टिंग। तो हमारी ये कोशिश है, दैट इज अवर हॉबी। जिस वक्त व्यक्ति अपने कार्य को एक हॉबी समझता है तभी उसमें निखार आ सकता है। तो सारी हमारी अटेंशन जो है वो उस पर लगी हुई है, हमारी थिंकिंग भी कैसे करना है क्या। और आर्टिस्ट भी हमें एक अच्छा मिल गया है जो कि वो व्यक्त करता है कि जो भी हम लिख रहे हैं उसको वो एक्सप्रेस कर सके, हाईलाइट कर सके। तो ये जो पीजी डिप्लोमा का कोर्स है इसके कुछ हिस्से मैंने पढ़ाए भी हैं वहाँ पर, और अभी भी पढ़ाने का विचार है। तो थोड़ी सी डाइवर्शन के लिए, थोड़ी सी चेंज के लिए उन उन टॉपिक्स को मैं कवर करना चाहूँगा जो जो मेरे आर्टिकल्स छपे हैं, अभी मैंने डाउनलोड किए। पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि भाई ये आर्टिकल जो हैं ये गूगल पर अवेलेबल हो जाएंगे सर्च करने से। तो लेकिन ये देखा मैंने कि भाई एक आर्टिकल ढूंढ रहा हूँ और उसके बदले में 2 आर्टिकल मुझे और भी मिल रहे हैं, तो आई फेल्ट एनकरेज्ड बाय दैट। तो ये आप इसको मतलब थोड़ा एंटरटेनमेंट ही समझिए कि वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लें, लेकिन इसमें बातें जो हैं वो आ जाएंगी। जैसे नीड और ग्रीड की भी बात है, ऑनेस्टी की बात है। कि एक बार कॉन्फ्रेंस हुई हेडमास्टर्स की, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वैल्यूज कौन कौन सी रखें। अगर आपने स्कूल कोई चलाना है तो उसके लिए कौन कौन सी वैल्यूज रखेंगे, तो वो वैल्यूज डिटरमिन की गई कि ये वैल्यूज हैं। और आपके विचार में अगर आपने किसी इंस्टीट्यूशन को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को रन करना हो, तो आप कौन सी वैल्यू जो है उसको टॉप पर रखेंगे। सपोज यू आर सपोज टू राइट डाउन 5 वैल्यूज अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी, विच वैल्यू वुड यू लाइक टू पुट मोर। हाँ जी, हाँ जी, डिसिप्लिन, ओके, आप बताएं। एक्यूरेसी, डिसिप्लिन, एक्यूरेसी, आप बताएं। हाँ जी, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, हाँ 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 जी, कंसेंट्रेशन, राइट, कैरेक्टर, ओके, हाँ, पंक्चुअलिटी, और हाँ जी, हाँ जी, ट्रूथ, यस। अब ट्रूथ है, ऑनेस्टी है, इंटेग्रिटी है, तो ये बहुत सारी वैल्यूज जो हैं वो आ जाती हैं। इंटेग्रिटी में आज इंटेग्रिटी की बहुत जरूरत है, इंटेग्रिटी ऑफ पर्सन. तो इंटेग्रिटी का एक तो मतलब है सत्यनिष्ठा, कि योर पर्सनैलिटी और कैरेक्टर शुड बी बियॉन्ड एनी डाउट, बियॉन्ड एनी क्वेश्चन, उस पर कोई उंगली ना उठा सके. वी नीड मैन ऑफ इंटेग्रिटी, नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रांग. तो इंटेग्रिटी की आज बड़ी जरूरत है, और इंटेग्रिटी के लिए उसमें ऑनेस्टी भी इंटेग्रिटी का एक बड़ा अहम हिस्सा है. उसके लिए हमें जरूरत है कि समटाइम्स वी हैव टू पे द प्राइस ऑफ इंटेग्रिटी. कि एक बार एक फोर्ट था, फोर्ट किला, तो वहां पर अटैक करने के लिए आए एनिमी फोर्सेस, और उन्होंने किले की चाबियां मांगी कि गिव द कीज टू अस ऑफ द फोर्ट. ही सेड नो नो, आई कांट बेट्रे माय कंट्री, तो वी शुड शूट यू. सो व्हाट, अब शूट कर दें. दे शॉट हिम डेड. दूसरे किले पे गए तो उस किले में जाकर देखा, उसे कहा कि चाबियां, वी शैल गिव यू सो मच मनी, पैसा दे दिया. उसने चाबियां दे दी. आफ्टर दैट दे शॉट हिम डेड. कि जब आप अपने कंट्री को बिट्रे कर सकते हो, यू कैन बिट्रे अस आल्सो टुमारो, बिकॉज यू कैन बी सोल्ड. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? Both had to lose their lives. Both had to lose their lives. लेकिन फर्क क्या है? एक एक डेथ कैसी है? कैसी है? हैं? है ना, वो उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? हैं जी? That is shameful. Shameful. और दूसरी डेथ है विद ऑनर. तो इंटेग्रिटी में बहुत बात शामिल हैं. साउथ के एक इंजीनियर थे, तो उनको दीवान ऑफ मैसूर की पोस्ट की ऑफर हुई. तो वो अपनी माता के पास गए कि माता जी, मैं आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आया हूं, मुझे ये पोस्ट ऑफर हुई है, क्या मैं एक्सेप्ट कर लूं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन मेरी माता जी एक शर्त है कि जब मैं पोस्ट ये एक्सेप्ट कर लूंगा तो आप मेरे पास किसी की सिफारिश लेके मत आना. नहीं तो मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा. व्हाट इज दिस? दिस इज इंटेग्रिटी. दिस इज कैरेक्टर. आपके उसमें सिलेबस में कहीं कैरेक्टर का भी सवाल है. कैरेक्टर, व्हाट इज कैरेक्टर? चीजों को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल होता है. उसके लिए एक इलस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है. सपोज यू आर आस्ट डिफाइन ए मैंगो, आप कैसे डिफाइन करेंगे मैंगो को? कैसे कोई कर सकता है डिफाइन मैंगो को? एनीबॉडी हियर? Yes, yes. Is a taste. Or well, you can say mango is a fruit. Or mango is a favorite fruit. Mango is a favorite. Haan ji? Zor se bolenge. King of fruit. And if I say it is the queen of fruit, have you any objection? Have you any objection? So we can't describe, we can't define these concepts, they defy definition. हम नहीं कर सकते. तो उसके लिए we have to give some example. एक यंग मैन आता है, he goes to a hospital. और नर्स आती है, उसको कहता है कि मेरे जरा इंजेक्शन लगा दो, जल्दी इंजेक्शन लगा दो मेरे. कहता इंजेक्शन, I am going out of duty and some the other nurse will come and you get yourself injected through that nurse. वो कहता no, I want it immediately, अभी जरूरत है. तो वो इंजेक्शन लगा देती है कि ऑल राइट, मैं फिर चली जाऊंगी. इंजेक्शन लगा दिया तो फिर पूछती है कि well, young man, why were you in such a hurry? तो वो कहता है my wife wants me to be punctual at the time for lunch. My wife wants me to be punctual for lunch. But then he adds, however, she has been in coma for the last 6 months. Then she says, well, if she is in coma, why were you in such a hurry? He says, she is in coma, but I am not in coma. So character is not that what we do when we know that somebody is looking at us. Character is that what we do when we know that nobody is looking at us. So even when you are what is character and all that, you can begin with this example. ये Bible नहीं है, आपका course जो लिखा हुआ है वो एक व्यक्ति के views हैं. तो आप ऐसी भी examples उसको दे सकते हैं. Anyway, तो honesty जो है वो आज उसकी honesty की forms क्या है, कोई example दीजिए कि ये honesty की form है. Some example. कोई example दीजिए आप कि ये honesty का act कोई बता दीजिए. हम honesty की बात कर रहे थे तो आप कोई example दीजिए honesty की. This is an act of honesty.
If Abraham Lincoln was once asked to take up a case which was technically right but ethically not very appropriate, so he said he refused, saying, I sell my time, I don't sell my values.
और कोई example दीजिए honesty की, कोई example.
जैसे लिखा होता है पानी बर्बाद ना करें, save the water. लेकिन हम अगर ईमानदार हैं, हम चाहे मधुबन में है, चाहे ट्रेन में है, चाहे कहीं भी, अगर हम यथार्थ में उस वैल्यू को आगे बढ़ाने के लिए नई नई टेक्निक्स को खोजते हैं और उसको सेव सही तरीके से करते हैं, तो आई थिंक दैट इज ऑनेस्टी.
और कोई? यस यस.
एक लकड़हारा होता है, उसके बाद हाँ. होती है.
हाँ हाँ.
वो नदी में गिर जाती है.
हाँ.
वो नदी में गिर जाती है तो वो काफी रोता है, क्योंकि वही उसका एक मात्र सहारा होती है. तो वो बहुत रोता है. फिर एक जनवरी बाहर आती है एक गोल्डन की एक्स लेके और पूछती है कि क्या ये है आपकी है? वो मना कर देता है, नो ये मेरी नहीं है. जनवरी सिल्वर की एक्स देती है, फिर पूछती है क्या ये आपकी है, इसको ले लो. बोलता नो ये भी मेरी नहीं है. फिर जाके वो आयरन की एक्स दिखाती है, फिर बोलती है यस यही मेरी है. तो वो बोलती है ये गोल्डन की आपको ज्यादा ठीक रहेगी. बोलता है नहीं यही मेरा एक बात सहारा है, इसलिए शुरू से लेके अब तक मेरा पालन किया है, तो यही मेरी अपनी मैं स्वीकार लूंगा. तो उसकी इस ऑनेस्टी से उसने खुद सब कुछ तीनों एस टी.
राइट राइट राइट. तो एक्स मेरी है या मेरा है? एक्स मेरी है या मेरा है? नॉर्थ वाले कहेंगे एक्स मेरा है. एनीवे दैट इज इंसिडेंटल. तो मैं आपको चार पांच एग्जांपल्स दूंगा. तो ये मतलब कौन सी डेट को छपा था ट्रिब्यून में, तो उसको मैं कोट कर रहा हूं कि डिफरेंट एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं ऑनेस्टी की. वन डे आई वॉज इवेल्युएटिंग आंसर बुक्स ऑफ ए यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन. द टेस्ट इंस्टॉलमेंट हैड टू बी सेंट टू द हेड एग्जामिनर विद इन 24 आवर्स. Although I had excruciating toothache, दर्द तो सभी दर्द ही होता है, लेकिन जो दांत का दर्द है वो जो महसूस करते हैं उन्हीं को पता है. Excruciating toothache, that day I carried on bravely. Evaluation over, I found that just 6 out of 20 candidates had passed. Nothing unusual in English, but I intuitively felt that the failing candidates had received a raw deal. Unke saath insaaf nahi hua hai. Due to my troublesome tooth, I rushed to the nearest chemist, took a painkiller, and reviewed the evaluation. 4 failures turned into successes. The fate of the innocent candidates would have remained sealed if my conscience had not persuaded me to re-evaluate the answer books. अगर व्यक्ति सोचे कि अगर मेरा बच्चा या मेरी बच्ची का ये केस हो, अगर ऐसा सोचे कितनी बेइंसाफी हो जाएगी. और हमने देखा है पर्टिकुलरली लड़कियों की अपील्स आती थी कि माई मदर स्टेप मदर तो मेरे से बहुत घर का काम करवाती हैं, या मेरी सगाई हो चुकी है और मेरा पास होना जरूरी है. लाइक दैट अपील्स, यू नो, मीनिंगलेस अपील्स. लेकिन हैं, यस, तो फेट कैसे डिपेंड करती है एक व्यक्ति की. और वो एक्सक्रूशिएटिंग पेन जो है हमारी टूथ की, वो कारण बन जाए उनका, तो मैंने उनको रिव्यू किया और 4 जो है, दिस इज ऑनेस्टी. नंबर 2, वन डे while purchasing sanitary goods for building my house, I discovered that there was in the bill an error of 500 rupees to my advantage. 500 rupees mere se kam le raha. Ek main ye bhi soch sakta hu ki main agar isko kehta hu ki iske 2 rupees kam kar lo to wo nahi kar raha hai, खूब कमा रहा है. अब मेरी टर्न है कि 500 रुपीस मुझे मिल रहे हैं, एंड आई जस्ट कीप क्वाइट. तो ये भी एक मेथड है. व्हाट हैपेंड, आई एट वंस ब्रॉट इट टू द नोटिस ऑफ द डीलर. द जेंटलमैन इन हिज 50s गेव मी एन एस्टॉनिश्ड लुक एंड सेड, यू आर द फर्स्ट कस्टमर इन 30 years of my business career to point out such an error. I was astonished at his astonishment. For to me, an error was an error, whatsoever the amount or whatsoever the gainer, whosoever the gainer or the loser. In the early years of my career as lecturer in college, I was given charge of furniture in addition to my academic duties. कहीं वर्ड्सवर्थ पढ़ा रहे हैं, कहीं शैली पढ़ा रहे हैं, शेक्सपियर पढ़ा रहे हैं, और वहां मेज कुर्सियों को भी लेक्चर गिनता रहे. Well, once we invited quotations for the supply of some chairs and tables. One morning, when I entered the staff room, I found a stranger waiting for me. After introducing himself as one of the dealers from whom quotations had been invited, he said, "Sir, sir, kya hisab kitab hai?" You understand? Sir, sir, ye actual hai. Sir, kya hisab kitab hai? I at once understood what he meant and turned him away saying, "You are speaking to a teacher. You are speaking to a teacher. This is your self-esteem. You are speaking to a teacher. Teacher se baat kar rahe ho." Some years ago, when I was short of attaining the age of 65 by a few months, I had to go on a railway journey. I had to come to Madhuban. I requested a young man to buy me a reservation ticket, clearly telling him that I was not yet entitled to the senior citizen concession in fare. Even then, the young man brought me a concessional ticket. I at once sent him back to get that ticket cancelled and buy me a fresh one without any concession. The young man obliged me but said, "Uncle, there are people who are enjoying the concession even though they are much less old than you." "Highly unfortunate," I said, "but that doesn't mean that we should follow the unscrupulous." "But don't you think, uncle, that the dishonesty practiced by the common man is nothing as compared to the scams in which some of our big men are involved?" he asked. "No, there can't be any comparisons," I said. "The big men have to be dishonest in proportion to their high status. The big men have to be dishonest in proportion to their high status. For instance, you can't expect such a man to sell his conscience just for a party sum of ₹500 liye. Kya wo apni zameer ko bech de? Uske zameer ki to bahut badi qeemat hai." The irony did not fall flat upon the young man. Wo samajh gaya. So he asked, "How do you account for the downfall, uncle?" "It is greed, not need. It is greed, not need," I said, "that rules our hearts." And after a pause, I added, "Gone are the days when Mukesh melodiously sang, 'Zyada ki nahi lalach humko, thode mein guzara hota hai, hum us desh ke vaasi hain, jis desh mein Ganga behti hai.'" The young man was fully convinced. तो मैं मधुबन ही आ रहा था, तो वैसे मैं ट्रिब्यून ही पढ़ता हूँ, ट्रिब्यून के लिए लिखता हूँ, वही पढ़ता हूँ। तो बाई चांस मैंने उस दिन हिंदुस्तान टाइम्स खरीद लिया, उसके पास ट्रिब्यून पढ़ के आया था। मैंने कहा हिंदुस्तान टाइम्स घर पे पढ़ेंगे, इसमें ट्रेन में बैठे बैठे पढ़ लेंगे। तो मुकेश पर एक आर्टिकल था, तो ये लाइन्स जो थी, "ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है," तो इसने जो कंक्लूजन था वो मुझे दे दिया, उससे मैं प्रेरित हुआ। तो कई बार ऐसा होता है कि बाबा बड़ी मदद करता है। सतीश भाई ने वो जो गाना लिखा है, "कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है, सोचो तो तुम्हें कौन मिला है, कौन हमारा तुम्हारा साथी है?" तो सतीश भाई से मैं बात कर रहा था, तो वो मुझे बता रहे थे कि ये लाइन्स कैसे सूझी, कि भाई एक बार मैं ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था और जो मेरे गीत लिखे हुए थे, जितने भी गीत लिखे हुए थे उनकी कॉपियां जो हैं वो ऊपर रखी हुई थी, सामान रखा हुआ था, ट्रेन बिल्कुल चलने ही वाली थी, बिल्कुल चलने वाली थी, तो मुझे ख्याल आया कि ओहो ये तो वहां पर है रखे हुए कॉपियां। तो वो मैंने फिर जाकर ट्रेन चल पड़ी और मैंने उठा कर ले आया, तब मुझे ये लाइन सूझी, कदम कदम पे मदद तुम्हारी, हर जगह पर बाबा जो है हमारी हेल्प करता है। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ, वो ये है कि मेडिकल विंग जो है इन्होंने मुझे कहा कि आप हमारी रिपोर्ट एक फंक्शन को, ये कॉन्फ्रेंस को कवर करो, माया एंड बॉडी मेडिसिन की थी कॉन्फ्रेंस इनकी, कि आप कवर करना इसको। तो मैंने कहा ठीक है कवर करता हूँ। तो जो दीपक चोपड़ा है, आप में से कितनों ने डॉक्टर दीपक चोपड़ा नाम सुन रखा है, वो हाथ खड़े कर, दीपक चोपड़ा का। तो वो यूएसए में है और मैनेजमेंट गुरु है वर्ल्ड में, पता नहीं 200 किताबें, ये बहुत कुछ लिख रखा है, इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। तो उससे पहले वो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा उन्होंने बात की थी। ओके तो उन्होंने तो जो रिपोर्ट लिखनी थी मैंने, उसमें उसका भी जिक्र करना था कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा उन्होंने ये कहा, उसका फोटो चाहिए था। ये बहुत छोटी बात है, जिंदगी में जो बहुत छोटी बातें होती हैं ना वो काफी महत्व रखती हैं कई बार। तो फोटो मेरे पास नहीं था कि मैं फोटो कहां से ढूंढूं, कहां से करूं। तो ऐसा हुआ कि आई पॉलिश माई शूज, तो शूज पॉलिश करके सम पीस ऑफ क्लॉथ वॉज रिक्वायर्ड, तो वो कहीं नहीं मुझे मिला। तो चलो मैंने कहा अखबार के कागज से इसको साफ कर लेते हैं। तो न्यूज़पेपर जो था उसमें देखा कि दीपक चोपड़ा का फोटो, दीपक चोपड़ा एक फोटो है, आई फेल्ट वेरी हैप्पी। तो उसको वो था ब्लैक एंड व्हाइट में शायद था, तो फिर उसको मैंने वो करवा लिया और फिर उसी से ही रिलीज करवाया। मैं तो फिर नहीं था यहाँ, दूसरी कॉन्फ्रेंस में ही एक्चुअली केम विजिटेड दिस प्लेस एंड दैट रिपोर्ट वॉज रिलीज बाय हिम एंड ही वेरी मच लाइक द फोटोग्राफ। हालांकि उसको क्या पता है कि किस तरीके से ये हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर स्टेप पर हमें विश्वास हो तो वो चीजें वो है आपके सामने आ जाती है, इस तरीके से हेल्प होती है, दैट इज सिंपली इंसिडेंटली। तो दूसरा मैं, हाँ 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 पहले पहले एनीवे तो अभी मैं प्रायोरिटी देना चाहता हूँ मर्डर और मर्सी किलिंग। फीमेल फिटिसाइड भी आपके उधर है, वेमेन एम्पावरमेंट में फीमेल फिटिसाइड है। तो मैंने इस पे ये टॉपिक लिया है मर्डर और मर्सी किलिंग। ये आयरॉनिक है, व्यंग है, बड़ा कड़ा व्यंग है। और ये कहा कि ये मर्सी किलिंग है, दिस इज ए डायलॉग कन्वर्सेशन बिटवीन माई सेल्फ एंड माई वाइफ। अगर आप वैसे फीमेल फिटिसाइड पे लिखें तो चीजें इंटरेस्टिंग नहीं होंगी, लेकिन अगर आप उसको लिटरेरी फॉर्म दे देते हैं देन थिंग्स बिकम इंटरेस्टिंग। सो दिस इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन मी एंड माई वाइफ। आई एडमायर माई वाइफ for her intelligent reaction to social news. Short sentence. A statement. I admire my wife for her intelligent reaction to social news. The latest proof of her intelligence came the other day when we were watching Doordarshan in the news. It was shown that the leaders of different religious groups were eloquently speaking against the heinous practice of prenatal sex determination tests and the subsequent destruction of the fetus if it happened to be a female. ये different जो religious leaders थे वो discuss कर रहे थे कि this should not happen. The religious men invariably described the phenomenon as murder of the unborn. Murder of the unborn. जिसने अभी जन्म नहीं लिया उसका murder है. A few minutes after this piece of news, there was program Surkhiyon mein, which further condemned the inhuman practice in unequivocal terms. Nothing had ever pleased me, a staunch champion of women's rights, than this news. Main bahut khush hua ki bahut hi achhi baat hai. And I made no secret of my pleasure. But mysteriously enough, my wife gave me a disapproving look. कि आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं? आप किस लिए खुश हो रहे हैं इतने? कहा नहीं कुछ, disapproving look. The mystery deepened when instead of agreeing with the description of the destruction of female fetus as a shockingly shameful act, she described it as a mercy kill. जैसे कहा ये mercy killing है, बहुत अच्छा है. What makes you think like that? I said. The birth of a girl, she said, is considered to be a curse in the Indian society. So why not nip the evil in the bud? Why not nip the evil in the bud? But don't you see the change that has taken place in the outlook of the people during the past few decades? People have started bringing up their daughters in the same way and with the same enthusiasm as they bring up their sons. एक बार एक बच्ची ने कहा मदर को कि मक्खन कैसा होता है जरा मुझे टेस्ट कराओ. मदर कहती है नहीं ये लड़कों के लिए होता है. सच डिस्क्रिमिनेशन. और बिहार में एक व्यक्ति ने उस दिन से दूध पीना बंद कर दिया जिस दिन लड़की पैदा हुई है. और डाउडी बट डोंट यू सी द चेंज दैट हैज टेकन प्लेस इन द आउटलुक ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेकेड्स. The result is that the girls have entered all the professions which were hitherto considered to be the citadel of boys. Not only that, women are occupying positions of trust and responsibility in all walks of life. And do you know that there is a serious move? Ye vyang hai, serious move. Aaj tak bhi Lok Sabha mein pass nahi hua 33% wala. And the government is serious. Vyang hai. And there is a serious move to reserve 33% seats for women in the legislatures of the land. I said all this almost in one breath to forestall any counter-argument by my wife. Sab kuch mein baatein keh gaya jaldi jaldi mein taaki wife kuch iska jawab na de sake. But quite contrary to my expectations, she shot back an arrow. Ek usne teer choda. Do you mean to suggest that the nominal figure of women enjoying equal status with men can compensate for the grave injustice being done to lakhs of Bharat ki betis? What injustice are you referring to? I asked. She had a derisive laugh and said, if you are that ignorant, let me give you two examples. First, take the notorious dowry system. Before independence, if a bride brought insufficient dowry, she was let off with a few words of taunting by the mother-in-law or the sister-in-law. But today, she has to pay with her life. What is this?
Yours.
Mine?
Yeah.
It is very rare, you know. So it is mine. All right. But quite contrary to my expectation, she shot back an arrow. Well, it is over. What injustice are you talking of? She had a derisive laugh and said, if you are that ignorant, let me give you two examples. Yes. But today she has to pay with her life, mostly under tragic circumstances. And even if she brings enough dowry, there is no guarantee that her peace of mind or life would be safe in case her in-laws have an insatiable thirst for material things. Who bothers that the bride has the virtues of a deity? Chahe woh devi hi kyun na ho, who bothers about it? Second, the greatest danger to women is the incidence of rape, in which not only their honor, but also their life is at stake, and the nation is talking of women empowerment. I felt shaken. But swinging back to the original theme, I said, female feticide is a crime. Yes. Yes, but who is caught in the net? Said my wife. Female feticide is a sin. Paap hai, I said, resorting to spirituality. What an orthodox statement, said my wife. Kitna रूढ़िवादी विचार है. मेरी वाइफ ने कहा, सिन की बात कर रहे हो आज के जमाने में. I stood badly defeated. So much for this female feticide. Then, you know, call of conscience. Conscience को आप क्या कहते हैं हिंदी में? हैं जी, क्या कहते हैं? चेतना. और हाँ जी, जमीर उर्दू का शब्द है. जमीर उर्दू का शब्द है जमीर. और क्या कहते हैं? अंतःकरण हिंदी का अच्छा शब्द है, और उर्दू का जमीर इजाजत नहीं देती. Something about this. Some boyhood incidents, however small, leave an indelible mark on our mental screen. कुछ घटनाएं बचपन की ऐसी होती हैं जो कि हमेशा के लिए हमारी माइंड की स्क्रीन पे अपना मार्क छोड़ जाती. It was 1945. I was a student of class 9. Living in the solitude of the hostel of a prestigious school in the Doaba, we were allowed to go to the city 2 miles away once a week. We made use of our legs. A tonga was a luxury. Cycle bhi luxury hoti thi, tonga bhi. Aur aaj bachchon ko koi to car mein ja raha hai. ओके, एक प्रोफेसर थे वो बच्चे को पीछे बिठा के साइकिल के पीछे कैरियर के पीछे बिठा के जा रहे थे तो बच्चा पता क्या कहता है डैडी यही मुझे उतार दो साइकिल पे हम जा रहे हैं साइकिल पे हम जा रहे हैं मैं पैदल चला जाऊंगा आगे फीलिंग ashamed of it. और कुछ स्कूटर पे जा रहे हैं अब कारों में जा रहे हैं कौन सी कार है लाइक दैट और या बेचारे जो गरीब हैं वो रिक्शा में जा रहे हैं कैसे लाइक पार्सल्स बीइंग कैरिड बच्चे पार्सल की तरह जा रहे हैं मुझे याद आता है मेरा वो मिडल आर्टिकल लेग्स आर टू वॉक विद टांगे चलने के लिए हैं हम इतने आरामदेह हो गए हैं कि इंटरकॉम लगा हुआ है ऑफिस में एक ही कमरे में इंटरकॉम है वो दूसरे से बात कर रहा है उठ कर नहीं चलना हम अपनी टांगों को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और डॉक्टर के पास जा रहे हैं anyway, टांगा वाज ए लग्जरी वन इवनिंग ऑन माय वे बैक टू द हॉस्टल After buying some stationery, I sighted a four-anna piece. अब four-anna piece पिछले साल से बंद हो गया है पता है आपको पता है ना आपको चवन्नी जो है, है? बंद हो गया डेथ ऑफ दैट चवन्नी है जी चलता है Anyway, I sighted a four-anna piece lying on the ground. I picked it up and made for a shop. और चार आने बहुत होते थे Four annas meant a lot. I picked it up and made for a shop, incidentally well lit, to buy some eatable. कि चलो चवन्नी मिल गई है तो इसे कुछ खाने के लिए खरीद लेते After receiving the coin, the shopkeeper suspiciously looked at me. At my face and said, "This is base. ये तो चवन्नी खोटी है. I had never thought that my newfound treasure could buy me nothing. ये जो खजाना मुझे मिला है, इससे तो कुछ भी नहीं मिलेगा. I was disappointed. Even then, I made another attempt. At the adjacent shop, equally lit up. The response was as feared. उसने भी कहा कि नहीं ये खोटी Now, not far from here, there were some vendors selling eatables. Vendors. रात का वक्त था Vendors थे रेडियो पे रेडियां लगाई हुई थी Their stalls were poorly lit. उनके स्टॉल जो थे वो रोशनी नहीं थी दिए से जला रखे थे उन्होंने द डिम लाइट ऑफर्ड मी ए चांस बट एज आई वॉज गोइंग टूवर्ड ए स्टॉल एन इम्पल्स अरेस्टेड माई स्टेप्स मेरे स्टेप्स रुक गए इवन इफ आई सक्सीडेड इन पासिंग ऑफ द बेस क्वाइन आई थॉट वुड आई नॉट बी रॉबिंग द पुअर वेंडर मे बी पार्शली of his whole day's earnings. I changed my mind and retraced my steps. Perhaps I was too young to know that there was such a thing as conscience or the inner voice. इस वक्त मुझे ये नहीं पता था. Sometimes our conscience is slow to act. When he retired as Chief Justice of the Punjab and Haryana High Court, Justice G.D. Khosla was requested to narrate some striking incident of his professional life. G.D. Khosla, he died at the age of 95. तो उनको कहा गया कि आप कोई अपनी जिंदगी का striking incident सुनाओ. तो उन्होंने क्या कहा? He spoke to this effect. Once an old lady stoutly fought her case. एक old lady थी उसने अपना केस जो है बहुत मजबूती से लड़ा खूब लड़ी But when I pronounced the judgment which went against her. She hastened to say, you have done justice, you have done justice. कॉन्शियंस ने कहा कि आपने जस्टिस किया है. तो जब मैं ये आर्टिकल भेज चुका तो मैंने दोबारा पढ़ा तो मुझे ख्याल आया कि विच वेंट अगेंस्ट हर, जजमेंट उसके खिलाफ गया, ये वर्ड्स उसमें नहीं लिखे थे, मैंने टाइप नहीं हुआ था. उसी वक्त मैंने एडिटर को लिखा कि इसके बगैर सारी स्टोरी खत्म है, यू एडिट एनीवे. तो उसने कहा यू हैव डन जस्टिस. Sometimes it may take years for one's conscience to search itself. Once a man sent his fare to the railway authorities after 2 decades of travelling without a ticket. 20 साल के बाद उसने interest calculate करके उनको भेजा. 20 साल के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट करके कि हियर इज योर मनी हैबिट. यस, इमेजिन द रिलीफ ही मस्ट हैव फेल्ट एज ए रिजल्ट ऑफ ओबेइंग द कॉन्शियंस टू पे द लॉन्ग स्टैंडिंग ड्यूज अबाउट विच नो वन एल्स न्यू. किसी को पता नहीं था. देयर इज नो पिलो एज सॉफ्ट एज ए क्लियर कॉन्शियंस, says a French proverb. Clear conscience jaisa pillow jo hai soft aur koi nahi ho sakta. Conscience is an impartial judge. No impeachment. Impeachment jante aap? Impeachment jante ho? Mahabhiyog. Mahabhiyog. No impeachment can be harsher than the one conducted by our inner voice. The punishment comes in the form of nerve-shattering remorse. जो हमें प्रायश्चित होता है इससे ज्यादा कोई punishment व्यक्ति को नहीं मिल सकती. Remember Mr. Clinton's tears? Remember Mr. Clinton's tears? क्या स्टोरी है, कोई बता सकेगा कि इनका क्या मतलब है? Remember Mr. Clinton's ears? आप में से कोई बता सकता है? ये 3 शब्द हैं. Remember Mr. Clinton's tears. कोई बता सकता है इसके पीछे क्या स्टोरी है? Anybody? कोई भी बताए ना. मिस्टर क्लिंटन तो जानते हो ना, बिल क्लिंटन है. खैर, तो उसका ये है कि ही हैड एन अफेयर विद ए लेडी, जो उसकी सेक्रेटरी थी. ही हैड एन अफेयर, तो सारा मतलब द होल वर्ल्ड वाज शेकन. ये जो सेक्स स्कैंडल था इसकी वजह से, और कहा गया कि भाई इसको इम्पीच करेंगे हम, प्रेसिडेंट को वी शैल इम्पीच, महायोग चलाएंगे इस पर. तो उसने नेशन को कहा था आई एम सॉरी, ही शेड टीयर्स ऑफ इट. तो सबसे बड़ा इम्पीचमेंट कौन देता है? अवर कॉन्शियंस. सो फार वी हैव टच्ड अपॉन कॉन्शियंस इन रिलेशन टू इंडिविजुअल्स. अभी तक हमने जो बात की है इंडिविजुअल्स की, कॉन्शियंस की बात की है. द वेरी फेट ऑफ नेशंस is at stake when the men at the helm of affairs let the voice of sanity go unheard. जिन्होंने फैसले करने हैं बहुत बड़े बड़े, वो अपनी जो सैनिटी की आवाज है उसको नहीं सुनते हैं. The decision to pour death and destruction in the form of atom bombs on the innocent men, women and children of Hiroshima and Nagasaki is a case in point. 8:30 बजे थे शायद गुलानी जी 6 अगस्त था कौन सी डेट थी, 6 अगस्त, हाँ। तो वो अपनी फैक्ट्री में वर्क करने के लिए जा रहे हैं इनोसेंट लोग, तो उन पर ये बम बरसाए दिए गए, जिन बेकसूर लोगों पर। एक पॉइंट यहां पर ये मैं ऐड करना चाहता हूं कि अगर जिन्होंने ये फैसला लिया, दे वर ऑल मैन, इफ देयर हैड बीन ए वुमन, तो आपका क्या ख्याल है कि वो क्या फैसला करते हैं जी? हाँ, इट माइट नॉट हैव हैपेंड। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन, कि जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं उनमें अगर वुमेन हो तो दे कैन ब्रिंग अबाउट ए चेंज। हाँ जी, राइट, सो बट टूडे द वर्ल्ड हैज बिकम मच मोर पावर ड्रंक, मच मोर आर्म्ड, मच मोर बिलिजेंट, मच मोर डेंजरस, बट नो नीड टू अपील टू गॉड टू सेव द ह्यूमन काइंड। द ग्रेट टेक्नीशियन, हु इज द ग्रेट टेक्नीशियन? गॉड। द ग्रेट टेक्नीशियन हैज सटली फिटेड इन टू ईच एंड एवरी ह्यूमन सोल ए सेफ्टी वॉल्व इन द फॉर्म ऑफ कॉन्शियंस, विच इज हिज नोबलेस्ट गिफ्ट टू मैन। Politicians are no exception. The survival or the annihilation of the human race lies in their decisive hands. Is it too much to hope that they will opt for survival? Now the last one. Call of conscience bhi aapke course mein aata hai. Aur female feticide ka to hai hi. Aur vastav mein jo aapka paper hota hai usme The whole course is covered. पहले ये होता था कि 5 questions, 10 questions आते थे और certain portions were left untouched. तो लेकिन आपका जो कोर्स है इस वे में क्वेश्चन पेपर जो है हर एक चीज हर एक टॉपिक पे आ जाता है लाइक दैट। तो अभी हम करते हैं बात, हु एम आई, हु एम आई सिखाया जाता है ना, हु एम आई। तो ये इसकी फॉर्म है, डेथ बी नॉट प्राउड। टॉपिक इज डेथ बी नॉट प्राउड। किसने ये पोएम किसने लिखी हुई है डेथ बी नॉट प्राउड, जानते हो? डेथ बी नॉट प्राउड जो है ये किस पोइट की पोएम है? Nobody knows. हाँ, आप बता रहे हैं ना वो तो आप बता रहे हैं जॉन डन की पोइम है, उसका भी जिक्र है, उससे मैंने टाइटल बोरो किया है, चुराया नहीं, बोरो किया, चुराया नहीं। एक स्टूडेंट से पूछा है, किसने कहा कि भाई ये आपने पोएम वहां से चुराई हुई है, यू हैव स्टोलन दैट पोएम, वो जवाब था नो सर दैट इज स्टिल देयर। दैट इज स्टिल देयर। लोग पता नहीं कैसे चुरा लेते, अपने नाम पे आर्टिकल छाप देते, किताबें अपने नाम पे छाप देते,
मैटर ले लेते।
तो वो हमारे कुलीग थे भिवानी में ही, उदय भानु हंस। तो यूथ फेस्टिवल में एक स्वरचित कविता कंपटीशन होता था, सेल्फ कंपोज्ड। तो वो बैठे थे, वो कोई शहर से लोग आए हुए थे और स्टूडेंट्स भी थे, वो कहे बेटा आपने क्या किस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हो? तो उसने कहा जी मैंने स्वरचित कविता में ले रहा हूं। तो कहा बेटा सुनाओ, तो उसने कविता सुना दी। तो प्रोफेसर हंस कहते हैं कि ये तो इतनी अच्छी कविता है, इतनी अच्छी कविता है, मुझे तो एक बार सुनने से ही सारी याद हो गई है। हंस साहब के लिखी हुई थी। तो उनकी उनका जिक्र आया, चार लाइनें भी सुनना चाहेंगे आप उनकी? उनकी चार लाइनें। मैं साधु से आलाप भी कर लेता हूं, मैं साधु से आलाप भी कर लेता हूं, मंदिर में कभी जाप भी कर लेता हूं, मानव से कहीं देव न बन जाऊं मैं, ये सोच के कुछ पाप भी कर लेता हूं। इसका जिक्र मैंने अपने किसी आर्टिकल में किया है। और चार लाइनें और सुना देते हैं आपको, क्योंकि गुलियानी साहब जो है ना, मेरे लिए एक डिस्कवरी है। ही इज वेरी ओरिजिनल पोइट, उर्दू का ये लिखते हैं। हाँ हाँ, तो वो तो शर्माते शर्माते सुनाया होगा ना। I am simply impressed with his imagination. हाँ, तो चार लाइनें वो ये हैं। जो अलबेला शब्द है ना हमारी भाषा में, वो है क्या कहते हैं, केयरलेस, लेजी, केयरलेस। लेकिन वो हिंदी में कहते हैं अलबेला का मतलब है खूबसूरत। वो ये लाइनें हैं, क्योंकि शहर ने तो ये लिखी, शहर लुधियानवी ने ताज के बारे में। कोई बता सकते तो क्या लाइनें हैं साहर की, साहर लुधियानवी की लाइन ना? वो तो है। खैर, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया मजाक। तो हर साहब लेकर लिखते हैं, ये ताज नहीं, ये ताज नहीं, रूप की अंगड़ाई है, गालिब की गजल पत्थरों ने गाई है, या चांद की अलबेली दुल्हन चुपके से यमुना में नहाने को उतर आई है। अबाउट ताज। खैर, तो कहां थे हम? बहुत धुंध थी, फॉग थी। चर्चिल ने पूछा किसी से, चर्चिल ने किसी से पूछा, हाँ चर्चिल पूछता किसी से, वेयर आर वी? तो वो व्यक्ति जवाब देता, यू आर इन योर कार। वो पूछना तो ये चाहता था कि ये कुछ नजर नहीं आ रहा हम कहाँ पे हैं, तो वो कह रहे यू आर इन योर कार। और चर्चिल जो था, ही वॉज वेरी विट्टी, कभी भी वो हार नहीं मानता था, चर्चिल जो था वेरी विट्टी। तो एक बार चर्चिल जा रहा था और उसने किसी टैक्सी ड्राइवर को बुलाया, कम हियर, आई वांट टू गो टू दिस रेडियो स्टेशन। तो ही डिडंट नो हिम, वो नहीं जानता था कि ये चर्चिल है। बट डोंट यू नो दैट आई हैव टू गो होम एंड लिसन टू द प्राइम मिनिस्टर्स ब्रॉडकास्ट टू द नेशन। मैंने घर जाना है, ओके? घर जाकर सुनना है, प्राइम मिनिस्टर इज ब्रॉडकास्टिंग टू द नेशन। तो वो बहुत खुश हुआ चर्चिल, वेरी वेरी हैप्पी। तो उसने, जब फर्ज कर लो कि 5 pounds हैं, फर्ज कर लीजिए, तो उसने 10 pounds उसके हाथ पे रखे, कहता टू हेल्प विद चर्चिल, कम अलोंग। Do you understand? No. You can't understand. समझे आप जो देखो चर्चर था ना तो उसने जब तक कहा कि मैंने जाना है तो उसने कहा बड़े इंपॉर्टेंट कि मेरी स्पीच सुनना. जब उसने पांच की बजाय 10 pounds उसके रख दिए हाथ पे कहता टू हेल विथ जहन्नम में जाए चर्चर आप बैठिए. एनीवे हम कहां थे. यस वेल डेथ बी नॉट प्राउड. तो ये जॉन डन की पोइम का वो तो पोइम है तो मैंने ये टाइटल बोरो किया है. जहां थे हम. इट वॉज ए टेरिबल एक्सीडेंट. एक चीज आपको बताना चाहता हूं. ये 4-5 words है. इट वॉज ए टेरिबल एक्सीडेंट. तो रीडर इसको पढ़े बगैर नहीं रह सकता. क्यूरियोसिटी का जो इंस्टिंक्ट है अपने बीएड वगैरह में पढ़ा होगा. क्यूरियोसिटी का इंस्टिंक्ट जो है वो बड़ा जबरदस्त है. फिर आप जाने फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ. एक माता हवाई जहाज में अपने छोटे बच्चे के साथ ट्रेवल कर रही थी तो छोटा बच्चा जो था वो बड़ा अपसेट सा महसूस कर रहा था. तो वो उसको रो रहा था. उसको चुप कराने के लिए उस मदर ने उसको स्टोरी सुनानी शुरू कर दी. ओके ओके. तो वो स्टोरी सुनानी शुरू कर दी. बच्चा चुप हो गया और वो भी चुप हो गई. जो 5 passengers बैठे थे कहते व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. What happened next? Anyway, it was a terrible accident. All the 30 occupants of the ill-fated bus, including the driver and the conductor, were killed on the spot. Did I say all? Sorry. There was one exception. The young lady who survived died at home the next day through an electric shock. Once again reinforcing the belief that death is not independent. It depends upon what?
Accident.
It depends. It is destiny which determines
time.
Its place, time and manner. This reminds me of my own experience when I found myself face to face with death. In April 1985, when I was returning home from college, I met with a roadside accident resulting in head injuries. As death was going to lay his icy hand on me, there came destiny to intervene on my behalf. What are you doing here? Trying to claim my victim. Don't you know that his wife and 3 children are waiting for him to join them at lunch? So what? So what? Don't you realize how shocked they would be when instead of finding daddy at the door, they would find someone else who has come to convey the heart-rending news of his sudden departure? Destiny kehti hai death ko. But human pain is my pleasure. Death says, human pain is my pleasure. Yes, malicious pleasure. Hateful pleasure. Destiny kehti hai? Yes, yes. But malicious well, don't waste my precious time, any other argument. He hasn't retired from service. How can you retire him from life itself? I do not respect age. I have killed people the day they joined a job. But what about his middles? ये जो middle लिखता है, इनका क्या बनेगा? ये जो articles अभी लिखने शुरू किए हैं, इनका क्या बनेगा? He has just opened his account with the Tribune as a contributor. There are so many other aspirants eagerly waiting for a break to fill in the gap. One thing more. Yes, come on. Please note that one day he is going to challenge you. One day he is going to challenge you. John Donne has already done it. इत्तेफाक देखिए, उसका नाम पोइट का क्या है? John Donne. और वो D-O-N-N-E done है. John has already done it. Aha! The English poet was mild, but you deserve a harder knock. That was that. Death was frightened. Death was frightened. He says, men are afraid of death as children are afraid of entering a dark room. Death was frightened and it slinked away. चुपके से भाग गई. I heaved a sigh of relief, thanking destiny that the time when my fateful, thank God not fatal, encounter with death took place. I was just an infant in the lap of spirituality. अभी अभी मैं ब्रह्म कुमार बना था. 12 years have gone by and I have become quite mature. All fear of death has left me because I have come to realize who I actually am. I am not this body. I am not these features. I am not this name. I am a very small, conscient point of light. Too subtle for death to tag. I am so small, soul, that I am too subtle that death cannot attack me, vanquish, defeat, or finish. I, the soul, am an actor on the world stage, putting on different costumes in the form of bodies to suit my role during different births. So don't hope, poor death, that you can ever kill me. And also remember that I will meet my loving incorporeal Father, the Father of all souls, when I give up my mortal coil. What a happy reunion that would be. I think it is one now. It's one now. It's one now. So thank you very much for giving me a patient here.
Thank you, Professor Kohli. Thank you very much. It was after such a long time listening to you once again that reminded me of those days at Government College Bhiwani when we were together long back in 1971. So we were together for about 6 years at Government College Bhiwani. So once again I felt the same old Professor Kohli is teaching his prep class or BA1 class. The way we have to teach English in those colleges or sometimes the rural students, that is reading the sentence and then translating it into English, reading it again and again translating it, the same, and that is the same old Professor Kohli was there. Professor Kohli was there. And apart from this, you must have felt he has touched so many values and he has been so inspiring. केवल ये नहीं कि values बताई आपको या उनके कुछ examples सुनाए या अपने कुछ जो medals इन्होंने लिखे tribune में तो उनमें से कुछ quote किया, केवल ये नहीं, they were all inspiring each one of us in one way or the other, हर एक को inspire कर रहे थे. और आज भी ये मेरे लिए he is an inspiring force. एक छोटी सी बात बताता हूँ, हम इकट्ठे रहे पिछले महीने नवंबर में था, शायद नवंबर में हम यहीं प्रभु पसंद में ही रह रहे थे. तो एक दिन मेरी जैसे आदत, मैं लिखता हूं और लिखने के बाद क्योंकि इनको उर्दू समझ आती है तो इनको सुनाकर मुझे बड़ा मजा आता है, क्योंकि चाहे ये बोर फील करते हों लेकिन ही वुड अप्रिशिएट मी, ही हैज बीन इंस्पायरिंग मी. एक दिन हम सुबह उठे तो मुझे कहते हैं कि मिस्टर गुलियानी, हेयर इज ए लाइन आई गिव यू, राइट समथिंग ऑन दिस. मैंने कहा आप दे. तो इन्होंने लाइन दी, पोएटिक लाइन थी, अब के भी दिन बहार के यूं ही गुजर गए. किसी पोएट की लाइन, अब के भी दिन बहार के यूं ही गुजर गए. कहने लगे इस शेर को पूरा करो. तो क्या कोशिश करेंगे. तो ये बाथरूम जा रहे थे, कहते मैं चलो मैं कोशिश करूंगा, पोएट्री का पता नहीं होता, हो जाए तो 5 मिनट में हो जाए, ना हो तो 5 साल में ना हो. ये वे बाथरूम के बाद बाहर आए तो मैंने कहा कोहली साहब सुनेंगे. कहते क्या. मैंने कहा अब के भी दिन बहार के यूं ही गुजर गए, हसरतें फिजा का आज भी करती हैं इंतजार. तो लाइक एन एल्डर ब्रदर ही पैटेड मी एंड ही वॉज वेरी हैप्पी. कहते आई नेवर इमेजिन्ड कि आप इतना वो अच्छा लिख पाएंगे. आई स्टिल रिमेम्बर सर. तो दैट इज हाउ. और फिर मैंने इनको वायदा किया, मैं खैर नहीं कोहली साहब, अब तो मैं ये आपको पूरी पोइम लिख के दिखाऊंगा, शेर नहीं. और द सेम इवनिंग इट वॉज परहैप्स, शाम तक जो है वो पोएम बन गई. और फिर मैंने इनको सुनाई भी सही, उसमें जो है शौक की बात है. ताजमहल की बात कर रहे थे साहिर लुधियानवी की, हंस साहब की बात कर रहे थे. हंस साहब मेरे टीचर भी रहे हैं, मेरे कुलीग भी रहे हैं. प्रोफेसर उदय भानु हंस जो हरियाणा के राजकवि रहे हैं, तो वो मेरे टीचर भी थे जब मैं कॉलेज में था, पढ़ता था. बाद में वो मेरे कुलीग भी रहे, हम इकट्ठे कई साल इकट्ठे भिवानी में, जहां कोहली साहब भी थे, हंस साहब थे, मैं था, हम इकट्ठे ही थे वहां पर जो है. तो आज भी हंस साहब कभी कभी मिलते हैं हिसार में, अब हिसार सेटल्ड है. तो जो ताजमहल के बारे में उन्होंने कहा, तो मैं कुछ ऐसा हूं कि जहां फिर ऐसा कहते हैं ना, जब टच कर जाए कोई चीज, तो मैं कई बार इनको कहा करता हूं, कोहली साहब को दोस्ती है पुरानी मजाक में, मैं इनको कहता हूं कोहली साहब जख्म मत कुरेदा करो, पुराने जख्म कुरेद देते हो मेरा पेन मजबूर हो जाता है, फिर चलना पड़ता है. तो साहिर लुधियानवी की पोएम का पूछ रहे थे, दो चार लाइनें याद हैं मेरे को, मैं बताता हूं. मेरे महबूब, ये ताजमहल नाम से ही पोएम है साहिर लुधियानवी की, बहुत लंबी पोएम है, मुझे पूरी याद नहीं है. मेरे महबूब पसे पर्दा है तशहीर वफा, तूने सतवत के निशानों को तो देखा होता, मुर्दा रूहों के मकाबिर से बहलने वाली अपने तारीख मकामों को तो देखा होता. लाखों लोगों ने जमाने में मोहब्बत की है, कौन कहता है कि सादिक न थे जज्बे उनके, लेकिन उनके लिए तशहीरों का सामान कहां, क्योंकि वो लोग भी मेरी तरह मुफलिस थे. एक शहनशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझको. दैट इज, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. लेट्स होप फिर कोहली साहब को सुनने का फिर मौका मिलेगा. ओम शांति. 2 मिनट के लिए बैठेंगे, उसके बाद जाएंगे. थैंक यू.
प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं।
प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं।
श्रीमत पर कहे हाँ जी, एक बाबा तू जान कोई वादे के पक्के पक्के हैं।
निश्चल जीवन वाले प्रभु को लगते अच्छे हैं।